कौन हो तुम, इस कदर नाजुक हो कि हाथ लगने से बिखर जाती हो, और इस कदर मजबूत हो कि पर्वतों को चीर के नदियों की तरह गुजर जाती हो। तुम्हारी आवाज इतनी मध्यम है कि तहजीब को भी तहजीब सिखा दे, और वही आवाज जब हक की गूंज बन जाए तो जुल्म की चट्टाने तिनके की तरह उड़ा दे। ऐसी ठोकर नहीं बनी जो तुम्हें गिरा सके, फिर रोज हाथों से गिरती हो दुआओं जैसी, धूप जैसे तपते हौसले हैं तुम्हारे, और खुद नजर आती हो छाओं जैसी। हैरान हूं मैं कैसे कुदरत ने तुम्हें इतने सारे जादू दे दिए। एक ही इंसान को मरियम का दिल और लक्ष्मीबाई के बाजू दे दिए। नारी के पूरे व्यक्तित्व के विरोधाभासों को कवि मनोज मुंतशिर ने बड़ी गहराई से पहचाना है और बड़े सम्मानित और सकारात्मक तरीके से उसे कहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिस शख्सियत को चुभन आमंत्रित कर रहा है, उनके लिए इन शब्दों से सटीक और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे लिए तो उनका व्यक्तित्व बिल्कुल ऐसा ही है जैसा इन पंक्तियों में कवि ने कहा है। जी दोस्तों, आज हम डॉक्टर शशि तिवारी जी से मिलेंगे, जिनके व्यक्तित्व को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कहां से लाएंगे वो अर्थ जो उनके समकक्ष खड़े हो सकें? साहित्य में आपके योगदान को कहने की कोशिश करना ईश्वर के आशीर्वाद को पलकों में भर लेने के समान है, जो सूक्ष्म तो है परंतु उनके दायरे को नापने का माप बना ही नहीं है। आपको संस्कृत में समग्र योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हो चुका है। और भी इतने सम्मानों से आप सम्मानित की जा चुकी हैं कि उनकी बात मैं करने लगूं तो न जाने कितना समय बीत जाए। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय और मैत्रेयी कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। अब तक आपकी 36 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप साहित्य के जीवन का वो अंश हैं जहां से आत्म मंथन की ज्योति प्रज्वलित होती है। तो आइए दोस्तों, इस रोशनी में कुछ मन के चुनने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर शशि तिवारी जी से कुछ बातें करते हैं।
हाँ जी नमस्ते मैम, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में।
हाँ भावना, धन्यवाद बहुत बहुत मुझे आमंत्रित करने के लिए
मैम आज,
और नारी दिवस पर मेरी भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं।
हाँ जी मैम,
नारी प्रगति और उन्नति के पथ पर चलती रहे, यही आशा और विश्वास है।
जी मैम, और आज के दिन मैं एक बात बोलूंगी मैम आपसे कि मैंने जितना भी आपसे बात की है या आपको जाना है, तो उससे आपके अंदर काम करने का जो जज्बा और जुनून मैंने देखा, उससे मुझे तो बहुत प्रेरणा मिलती है। आपको देख के मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखती हूँ।
धन्यवाद, मैं कहूँगी और क्या कह सकती
जी मैम।
ये संस्कार होते हैं जो छोटेपन से माता पिता को डालने चाहिए
जी,
बच्चों में,
चाहे
इसको हैबिट कह लो, आदत कह लो या संस्कार कह लो, मगर अगर बचपन से स्वभाव में ये सब आ जाता है तो फिर व्यक्ति वैसा ही रहता है, उसको कोई जगमगा नहीं सकता
जी मैम,
आदर्शों से हिला नहीं सकता
जी।
तो इसलिए माता पिता का योगदान और उनका उनके लिए हम लोग को आदर भाव रखना चाहिए हमेशा। और हम नारी दिवस तो मना ही रहे हैं तो माँ तो उसमें आ ही रही है
जी बिल्कुल,
और माता के साथ पिता भी अवश्य रखना है नाम याद, तो दोनों के प्रति सम्मान की भावना आजीवन सभी के हृदय में होनी चाहिए
जी मैम।
मुझे याद आ रहा है हमारे भारतीय संस्कृति का एक आदर्श वाक्य भी है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता
जी।
जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। पूजा का अभिप्राय पूजा नहीं है, पूजा का अभिप्राय सम्मान देना है। जब नारियों को सम्मान दिया जाता है, चाहे वो समाज हो, संस्था हो या परिवार हो, तो वहाँ पर सुख और शांति होती है और उसी को देवता कहते हैं। हिंदी में भी ऐसी बड़ी सारी कविताएं जो प्रसिद्ध कवियों ने लिखी हैं, छोटी सी लाइन मुझे याद आ रही है, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी, एक को नर कहते हैं, एक को नारी कहते हैं, और उसमें दो मात्राएं, इसमें एक मात्रा नहीं है
जी।
तो समान है, कभी हम कहते हैं, कभी कहते हैं उससे थोड़ा बढ़कर है, इस तरह से भारतीय संस्कृति और साहित्य में उसका वर्णन है। और ये दिवस स्मरण करने का है कि नारी की क्या गरिमा है, क्या महिमा है, क्या उसका विकास है, क्या उत्कर्ष है। और एक इतने प्राचीन हम भारत देश में रहते हैं, हम भारतीय हैं होने का हमें गर्व भी है, तो इस प्राचीन देश के इतिहास में नारी का क्या योगदान रहा और क्या स्थान रहा, इसको भी बहुत अधिक इस पर अध्ययन किया जाता है और अभी करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि इतिहास से हमेशा शिक्षा लेना चाहिए। तो यही सब हम नारी दिवस पर आकलन करते हैं और उसकी महिमा और गरिमा का गुणगान करते हैं, उसकी स्थिति और योगदान पर विचार करते हैं और आगे उसकी क्या भूमिका हो इसके बारे में भी योजनाएं बनाते हैं।
जी मैम, मैम नारियों के उत्थान के लिए एक चीज बहुत आवश्यक है कि उनको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो जब आपका जन्म हुआ तो आजादी का समय था, उस समय तो उस समय क्या शिक्षा की स्थिति थी और उससे और आज के समय में आप कितना अंतर पाते हैं?
हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जब हम पैदा हुए या हमारा जन्म हुआ उस समय भारत देश स्वतंत्र हो चुका था, दो साल ढाई साल की थी मैं।
जी जी।
तो ऐसा थोड़े बड़े होते गए हमने कोई मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो उल्लास और जो उमंग होती है लोगों में थी, एक जनून था जो आप अभी जिसकी बात कर रही थी, हम अपने देश को और अच्छा बनाएं, बाहर निकल गए जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो इस तरह की भावना से सभी अधिकारी लोग, अफसर लोग, जो काम जिसने जो काम करना है वो करते थे, चाहे पेड़ उगाना हो, चाहे किसानी करनी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे स्कूल का टीचर हो, तो सबने मिलकर देश निर्माण करना है, ये भावना थी। और बहुत कहना चाहिए कि नीचे के स्तर से आगे बढ़ना था, क्योंकि याद करते हैं हम कभी कभी, बातें भी हम लोग करते हैं जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं, कि भोजन का भी क्या होता था, अंगीठी होती थी या किसी के घर चूल्हा होता था, और ऐसे नहीं कि जब चाहे कुछ भी खा लो, खाना जब बनेगा तभी खाते थे, जैसे आजकल नमकीन मिठाई बाजार में मिलती है, इस तरह से इतनी कुछ नहीं थी। तो बहुत बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो ये तक अनुभव करती हूँ कि उस समय ये जो फूल हैं, जैसे आजकल फूल बिकते हैं या फल बिकते हैं ठेलों के ऊपर, इतने सारे संतरे या अमरूद या आम, तो वो सब भी उन दिनों बहुत बहुत कम दिखाई देते थे। तो आप सोचो पेड़ लगाना, फिर वर्षों के बाद फलों का उत्पन्न होना, तो ये सब करने की आवश्यकता थी और किया गया, तभी तो आज इतना सारा हमको फल और सब्जियां और फूल ये सब मिलते हैं। तो जो आप कह रहे हैं वो सभी क्षेत्रों में विकास की जरूरत है, शिक्षा में तो थी, और शिक्षा नारियां लड़कियां और लड़के बराबर पाने के लिए उत्तर उनके पास अधिकार था, शहरों में जा ही रहे थे, कोई भेदभाव नहीं था। हमारा जो बचपन का स्कूल था उसका नाम था राष्ट्रीय विद्यालय, उसमें लड़के लड़कियां एक साथ लाइन बना के खड़े होते थे, गुरुजी जमीन पे बैठ के हम लोग पढ़ते थे, गुरुजी पाठ पढ़ाते, कभी पहाड़े याद कराते। तो बिल्कुल भारतीय पद्धति से पढ़ाई वढ़ाई शुरू हुई थी और लोग एक साथ सब कुछ करते थे। हो सकता है ग्राम में इतना ना हो, वहां पर कम शिक्षा हो, कम स्कूल हो, धीरे धीरे अब बन रहे हैं, उन दिनों नहीं रहे होंगे, तो अनुमान लगा सकते हैं कि एक साथ सब जगह नहीं होगा शिक्षा का स्थान, लेकिन शिक्षा पर जोर देना तो शुरू हो ही गया था और शिक्षा मंत्री भी थे उन दिनों, सब लोग जानते हैं, काफी पॉपुलर थे, और हमारे जो राष्ट्रपति थे उन दिनों जब मैं छोटी थी, राधाकृष्णन जी, वो तो खुद ही इतने बड़े विद्वान थे फिलोसफी के, उन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं, उपनिषदों का अनुवाद किया है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
जी,
और शुरू में तो पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो मतलब शिक्षा पर जोर ना दिया जाए ऐसा सोच ही नहीं सकते हम लोग, और इन सब ने मिलकर देश को आगे ले जाने का संकल्प किया और हम आगे जा भी रहे हैं
जी। अब तो ग्रामीण इलाकों में भी मैम काफी शिक्षा का विकास हो गया, मतलब अनिवार्य कर दी गई है प्राइमरी तक शिक्षा, तो बच्चे पढ़ते भी हैं, ऐसा भी नहीं, निरक्षरता तो बिल्कुल मेरे ख्याल से काफी कम हो गई अब, ना के बराबर है।
हाँ कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं
जी।
अच्छा दूसरी बात है कि ये ग्राम और शहर ये भेद तो अभी हो रहे हैं ना
जी।
अब अगर जैसे मैं वेद और संस्कृत साहित्य पढ़ाती हूँ तो हम देखते हैं कि कम से कम 5000 साल का हमारे देश का इतिहास है, कम से कम 2000 इधर रख लो अभी और 3000 पीछे बीसी में चले जाओ, ईसापूर्व में चले जाओ, तो 5000 साल कम से कम इतिहास है। तो इसमें स्त्री की दशा हमेशा एक सी नहीं रही है, इसीलिए शिक्षा की दशा भी हमेशा एक सी नहीं रही होगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना ग्राम लोग, ग्राम और शहर, मुझे नहीं लगता कि वैदिक काल में ग्राम और शहर ऐसी कोई चीज होगी, एक ही सारा कुछ एक सही होगा। ऐसे ही महाभारत की जब बात कहानियां हम लोग पढ़ते हैं, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, तो ऐसा नहीं लगता कि वहाँ गांव अलग होगा शहर अलग होगा। तो ये गांव और शहर धीरे धीरे बाद में ये किसी और वजह से खेती इत्यादि कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी वजहों से इस तरह से बाद में विभाजन प्रारंभ हुआ होगा। तो इस जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करें, साहित्य की दृष्टि से अध्ययन करें, तब भी नारी की स्थिति का आकलन करना चाहिए, क्योंकि समाज की स्थिति का तो पता तभी लगेगा जब नारी की स्थिति का पता लगेगा, या कह लो नारी की स्थिति से समाज की स्थिति का पता लगेगा। तो भावना ये है कि इस तरह से हम साहित्य या इतिहास को आधार बनाकर नारी की प्रगति और अवनति दोनों जो भी हो रही है उनका मूल्यांकन कर सकते हैं।
तो मैम फिर ग्रामीण और शहरी इलाकों का उस समय भेदभाव नहीं था आप जैसा कह रहे हैं, तो फिर इतना ज्यादा मतलब क्यों हो गया आज के समय में, तो बहुत ज्यादा हो गई है ये चीज।
हो सकता है मध्यकाल में हुआ हो, जैसा थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा है कहीं टोडरमल और क्या जमीनें होती थी जिनकी, अब खेती करेंगे तो लंबी लंबी जमीनें चाहिए ना, खेत चाहिए, तो जब खेत हो गए तो एक के बाद एक खेत हो गए, इस तरह से काफी जमीन हो गई। हो सकता है धीरे धीरे उसको गांव कहना शुरू कर दिया हो,
मुगलों के शासनकाल से ज्यादा पसंद
हाँ,
हुआ है,
ऐसा कर मान सकते हैं कि बाद में कभी हुआ है, कहने से कहने लगे और फिर वहां पर दूरी हो गई शहर से, तो पढ़ाई कम हो गई, फिर मेडिकल कम हो गया, इस तरह से कुछ रहा होगा वजह। नहीं तो विदेशों में भी ऐसे ये नहीं होता कि ग्राम है ये शहर है, खेत शहर के बीच बीच में फिर शहर आ गया फिर खेत आ गए, मतलब खेत का मतलब ये नहीं है कि बेचारा वो पिछड़ा हुआ है कोई है, उनके पास भी वहाँ गाड़ियां होती हैं, घर में घर बीच में बना होता है। तो कर्म क्या कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे यहाँ किसी वजह से ऐसा मानना शुरू कर दिया गया
जी।
और अधिक तो मैं इस पर ज्यादा नहीं जान कह सकती, लेकिन मुझे इतना पता है कि जैसे रामचंद्र हैं मान लीजिए, तो चारों भाई पढ़ने गए तो गुरुकुल गए, अब गुरुकुल तो खुली जगह में ही होगा
जी जी,
जंगल में ही होगा, तो इस तरह से अगर हम कहें कि जंगल का एरिया या खुली जगह ग्राम है, वाल्मीकि जो सीता जी के बच्चे लव और कुश थे, उनको उन्होंने जब सीता उत्तरकांड में की कथा है के अनुसार जंगल में चली गई, अकेले बच्चों को जन्म दिया, वाल्मीकि के आश्रम में रहती थी, तो वो आश्रम भी तो जंगल, या अब जंगल कहेंगे क्या कहेंगे नहीं कह सकते ना, क्योंकि अच्छे सारे हजार बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, लोग रह रहे हैं, खाना पीना भी होता है और खुली जगह है, नदी है, पानी है, तो थोड़ा दूर है, मतलब जो जहाँ पर ज्यादा दूसरे तरह के काम हो रहे हैं उनसे ये थोड़ा दूर है, शिक्षा का स्थान है
नगरों से,
तो इस तरह से भेदभाव है। बाकी कहने गांव और शहर कहने से कुछ, अब जो जिस अर्थ में कह रहे हैं उस अर्थ में पहले नहीं था ऐसा मुझे लगता है।
जी बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही मैम, आपने कहा तो मुझे भी ये चीज लगी कि बल्कि उस समय तो जितने शिक्षा संस्थान थे सब ग्रामीण इलाकों या जो भी बोल लीजिए आप उनको बाहर के इलाकों में ही ज्यादा थे, नगरों में नहीं थे। जी
ठीक कह रहे हो, अब जैसे रामचंद्र जी का घोड़ा सब जगह जा रहा था तो वो आश्रम के किनारे से भी तो निकला,
जी बिल्कुल,
तो मतलब शहर और गांव ऐसे कि शहरों में चलेगा गांव में नहीं जाएगा ऐसा कुछ नहीं है ना, वो सब कुछ मिले हुए हैं, बीच में जंगल भी हैं, जानवर भी इन लोगों को मिल जाते थे, रहते थे इनके साथ, हिरन दौड़ रहा है कहीं कुछ हो रहा है, भरत शेर के मुंह में हाथ डाल के दांत गिन रहा है, इस तरह की कहानियां है ना
जी,
तो वो मतलब बहुत नहीं है कि अब ये वाइल्ड लाइफ का है, एरिया है ये, शहरी शहर है, तो वो हमारे व्यवस्था की वजह से हम लोगों को करना पड़ा ना। ये भी तो देखो सड़कें बन रही हैं लोगों, तो व्यवस्था है, सरकारें हैं, तो फिर डिवीजन करना पड़ता है, इस वजह से ये होता चला गया।
मैम आपके शिक्षा के बाद हम लोगों ने अभी की, तो आपने वेद को क्यों सुना, मैं ये जानना चाहूंगी, उसका कोई खास कारण?
कुछ ऐसा कारण नहीं है, मैं अगर याद करती हूँ तो मुझे लगता है आजकल की लड़कियाँ, पहले की लड़कियाँ तुम सोच भी नहीं सकते कि कैसी, मतलब मैं कैसी लड़की थी, मैं अपने को सोचती हूँ कि मैं कैसी लड़की थी, तो एक सीधी सादी भोली भाली जिसको कुछ पता नहीं है, पढ़ाई करनी है तो कर रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में है, इस क्लास में हूँ तो इसको पढ़ना है, तो हमारा कर्म है तो हम पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर लाना है तो लाना है, तो इस तरह से हम पढ़ाई करते थे। तो बीए में 3-4 सब्जेक्ट होते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में,
जी जी,
वो करके मैंने टॉप भी किया, फिर उसके बाद ये हुआ एमए करना है, और यूनिवर्सिटी में तो मैं किसमें करूं, अब जो सब्जेक्ट आपने पढ़े होते हैं 3 या 4 उनमें से किसी एक में कर सकते हो, तो किसमें करो, तो मुझे तो सारे तीनों में मेडल मिला हुआ था और तीनों में हाईएस्ट नंबर थे, और कुछ बुद्धि फिर भी लगता है जैसे थी नहीं, तो मैं अपने पिताजी के पास गई, तो मैंने कहा एमए में किसमें सब्जेक्ट में करूं, तो वो बोले कि क्यों, क्या समस्या आ गई? मैंने कहा ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा इतिहास, एक तो मैंने प्राचीन भारत का इतिहास लिया है, एक हिंदी साहित्य लिया है, एक संस्कृत साहित्य लिया है, तो वो मुझसे प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन सा विषय है जो तुम गुरु के बिना नहीं पढ़ सकते, इसमें गुरु की आवश्यकता है और गुरु के बिना नहीं। फिर मैंने सोचा मैं हिंदी साहित्य उसमें क्या है, वो तो मैं खुद ही पढ़ लूंगी, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इतिहास में भी क्या है, वो तो हमारे संस्कृत ग्रंथों के साथ साथ लगातार इतिहास की बात होती रहती है, इतिहास में तो सब है संस्कृत
जी,
तो गुरु के बिना तो संस्कृत साहित्य नहीं पढ़ सकते। तो पहले तो आपको पता होगा एमए में तो सब एक साथ पढ़ते हैं ना, एमए पार्ट वन में
जी, जी।
तो संस्कृत इस तरह से ली
जी।
फिर जब वो संस्कृत में पास हो गए, अब एमए पार्ट टू में ये होता है कि वेद लेना है, कि साहित्य लेना है, कि व्याकरण लेना है, कि और कुछ लेना है, वो 8-9 सेक्शन होते हैं
जी जी।
फिर मैं उनके पास पहुंची, फिर उन्होंने यही प्रश्न किया कि तुम्हारे संस्कृत साहित्य में ऐसा कौन सा विषय है जो तुम बिना टीचर के नहीं पढ़ सकते, तो मैंने कहा मुझे लगता है वेद है, क्योंकि वेद तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, नाटक तो पढ़ ही सकते हैं, साहित्य में क्या है, कोई नाटक है, काव्य है, काव्य शास्त्र है, ये तो शायद मैं मन में मैंने सोचा और उनको बोला वेद
जी।
तो कहते हैं फिर वेद ले लो, तो इस तरह से वेद लिया था। अब भगवान ने या हमारे पापा के माध्यम से जो भी दिखाया रास्ता, लेकिन मैं समझती हूँ शायद बहुत उचित निर्णय था, और मैं अभी तक वेद में ही ऐसे खोई रहती हूँ, वैदिक चीजों में, वेद के ज्ञान में, और मैंने ये निष्कर्ष रूप में ये भी पाया है कि जितना भी हमारा संस्कृत साहित्य, प्राचीन भारत का की संस्कृति, हमारे देश की जितने जीवन मूल्य, हम लोगों के मानव मूल्य, आदर्श, भारतीय जिसको कहते हैं ना, भारतीय होना क्या है, सबका जो मूल है वो वेदों में है
जी,
सबका मूल वेद है, जैसे गंगोत्री है समझ लो वैसा है, तो वहां से धाराएं निकलती हैं, 1, 2, 3, 4, तो जितनी धाराएं निकलती हैं धरती पर आके और बन जाती हैं, 1 से और 2 बन जाती हैं, अनेक धाराएं बन जाती हैं, तो उसी तरह से ज्ञान जो वेद का जो ज्ञान है वो समुचित ज्ञान है, जुड़ा हुआ ज्ञान है, एकत्र ज्ञान है, उसमें से अनेक धाराएं निकलती हैं, अनेक दर्शन, अनेक पंथ, अनेक मार्ग, अनेक सिद्धांत, जितने भी आपको रामचरितमानस ले लो, वाल्मीकि ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी साहित्य, कोई भी किताब, वेद को ना उसमें सूत्र हो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए मूल मतलब है वेद, और उसको सबको नाम उसका पता होना चाहिए, उसकी महिमा का पता होना चाहिए। पढ़ने का तो खैर बहुत समय लगता है, और मैं भी अभी तक भी मुझे आता क्या है, मुझे लगता है शायद मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि जब आप किनारे खड़े होते हैं समुद्र के, तभी तो आपको पता लगता है समुद्र कितना बड़ा है।
बिल्कुल।
तो कुछ हमें तो जरा सा दिखाई दे रहा है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। तो उसी तरह ज्ञान तो अनंत है, इसलिए आता कितना है मैं वो तो बिल्कुल नहीं कह सकती कि मुझे बूंद के बराबर आता है या वो भी नहीं आता, लेकिन ये जरूर है कि उसकी महिमा का पता लगता है और उसमें जागृत ज्यादा से ज्यादा जानने की जिज्ञासा पैदा होती है।
जी बहुत अच्छी बात कही मैम। वेदों का ज्ञान हो जाए तो आपका जैसा कहना है कि हमें सारे ग्रंथों का ज्ञान हो सकता है, उसके मूल में वो वेद है। जी
हाँ, आप सही से समझ रहे हैं, यही कहने का अर्थ है।
जी, जी।
या फिर ये भी देखो भावना, इसका तात्पर्य निकलता है
जी।
जैसे बाद में अभी वर्तमान में ले लो, कई पंथ हैं, मतलब स्वामी लोग हैं, आचार्य लोग हैं, कुछ अपने अपने मार्ग बताते हैं, उनके अंदर उनके में भी मैं वेद के ही उसको देखती हूँ, लेकिन फिर वो कभी कभी आपस में ऐसे लगता है जैसे वो विरोधी हैं
जी,
लेकिन वो विरोधी मूल होते नहीं है, उनका जो मेन सिद्धांत है ना वो एक अलग अलग दो जो पॉइंट उन्होंने लिए हुए हैं वेद से, तो इसलिए लग रहा है कि वो विरोधी है, लेकिन वो विरोधी नहीं है। इसलिए ये जो आपने कहा कि मूल वेद है ये सबको पता होना चाहिए
जी,
और अगर मूल वेद नहीं है तो वो फिर सिद्धांत ही भारतीय नहीं है
जी। बहुत अच्छी बात।
तो आपस में जो विविधताएं हमारे देश में है धर्म को लेकर या कि विचारधाराओं को लेकर, वो विविधताएं सत्य ही है, ऊपर ऊपर की है, उनके नीचे जो अंडर करंट दौड़ रहा है एक, वो तो वेद का ही दौड़ रहा है, और अगर वेद का नहीं दौड़ रहा है तो फिर वो नकली है, वो असली है नहीं। तो इसलिए ये जो झगड़ा झमेला ऐसा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है
जी।
चाहे शंकराचार्य को मानो, चाहे रामानुजाचार्य को मानो, चाहे मध्वाचार्य को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे राम को मानो, चाहे हनुमान, मतलब सभी हमारे यहाँ है ना ऐसे देवी देवता, अनेक देवी देवता
जी,
तो
जी।
किसी को भी करो, कोई यहाँ पे भेदभाव झगड़े की को हनुमान जी को मान रहा है, कोई शिव जी को मान रहा है, कोई राम को मान रहा है, मगर सबको पता है कि है एक ही
जी।
एक ही के अनेक रूप है,
लेकिन पता नहीं है ना मैम, इसीलिए तो झगड़े होते हैं, बस मुख्य बात तो ये हो जाती है।
हाँ,
समझ नहीं पाते
हैं, इसलिए जब उनको पता नहीं है तभी झगड़े होते हैं, अन्यथा पता होना चाहिए।
बिल्कुल।
मुझे तो लगता है जो सचमुच में हृदय से थोड़ा भी, जैसे हम संस्कारों की बात कर रहे थे, भारतीय थोड़ा संस्कार है उसको पता है, मंदिर में गया जरूर है मगर उसको पता है ये पांच भगवान नहीं है, पांच मूर्तियां पांच भगवान नहीं है, एक ही है, एक ही के अनेक रूप है ये।
बिल्कुल। तो वेदों के अध्ययन का मैम आपको इसका मतलब एक तो यही लाभ हुआ कि आपने समझा कि सारे ग्रंथों के मूल में वेद हैं, और आप क्या इस विषय में बताना चाहेंगे कि क्या फायदा हो सकता हमको वेदों के अध्ययन का, क्या लाभ हो सकता है?
वेदों, जैसे हम लोगों का नारी दिवस के उपलक्ष्य में बातचीत कर रहे हैं
जी,
तो हम अगर नारी के स्थान को ही वहाँ पर समझना चाहें तो मैंने इस बात को पता नहीं कितनी बार अनुभव किया है कि शायद पूरे इतिहास में सबसे जो आइडियल सिचुएशन है, सबसे आदर्श स्थिति जो नारी की है वो वेदों में प्राप्त होती है।
अच्छा।
वैदिक साहित्य में प्राप्त होती है, आदर्श स्थिति है।
अच्छा।
कहीं पर भी कोई भी समस्या हो वहां से उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अब आदर्श स्थिति ये है कि आप जानते ही हैं कि उसके नारी के अनेक रूप होते हैं, माता के रूप, पत्नी, पुत्री, बहन और वधु, इस तरह से अनेक रूप होते हैं। लेकिन माता के रूप में आपको याद होगा पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता हमारी गुरु है, पिता हमारे गुरु हैं, तो पिता के बाद माता का स्थान, पिता क्योंकि घर का मुखिया है, हमारी व्यवस्था पितृत्मक व्यवस्था है
जी।
तो पिता बड़ा है, लेकिन पिता की बात दूसरे नंबर पर माता है, दोनों मिलकर पति पत्नी अगर बन रहे हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर दंपति बन रहे हैं। दम माने होता है घर, घर के पति माने स्वामी, दोनों मिलके दंपति बन रहे हैं। वो धर्म चारणी है, धर्म वो कर ही नहीं सकते पति जब तक कि वो पत्नी उसके साथ में नहीं होगी। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें जो हम अगर थोड़ा भी धर्म इत्यादि के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ये दिखाई देगा कि माता के रूप में तो उसका परम स्थान है ही, फिर पत्नी के रूप में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ लोग कहते हैं पुत्री तो कुछ खास नहीं होगा, पुत्री को तो कोई मांगा नहीं, उन्होंने मंत्र सारे पुत्र के लिए कहे। मैंने इस पर पूरा एक पेपर लिखा और पूरा ढूंढ डाले कि पुत्र के कितने शब्द हैं ऋग्वेद में
जी।
तो पुत्र के शब्द मुझे 35 मिले, 35 शब्दों का मैंने एटिमोलॉजिकल मीनिंग निकाला, एटिमोलॉजिकल मतलब व्युत्पत्ति परक अर्थ निकाला और फिर उनकी समीक्षा की तो उनको पाया कि उनमें से आधे से ज्यादा शब्द संतानवाची हैं, पुत्रवाची नहीं है।
मतलब पुत्र पुत्री दोनों हो सकते हैं उसमें,
पुत्र पुत्री दोनों हो सकते हैं। जैसे सु कह रहे हैं सु
जी,
प्रसु कह रहे हैं, सूनु कह रहे हैं, सूनु तो संस्कृत में भी अभी भी कहते हैं सूनु। तो जो उत्पन्न होने वाला है, जो उत्पन्न होने वाला है, जो सब जगह यही मीनिंग है, जो उत्पन्न होने वाला है। जैसे हम लोग भी हिंदी में बोलते हैं ना, कब होने वाला है बच्चा तुम्हारे, कब होने वाला, तो मतलब होने वाला है, अभी उसका नाम तो है ही नहीं, तो वो सूनु उसको कह रहे हैं, प्रसु कह रहे हैं। ऐसे अनेक शब्द हैं। तो यहाँ पुत्र अर्थ कहाँ से निकल रहा है, पुत्र तो अर्थ निकल नहीं रहा है, तो इसलिए वो संतान की कामना कर रहे हैं, पुत्री पुत्र की नहीं कर रहे हैं
जी।
ये बात भी दूसरी, एक तो ये बात है, दूसरी जो मैंने ढूंढी और मुझे नहीं कहीं पे भी दिखी, कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि हमें पुत्री ना दी जाए
जी,
है ना। जब वो कह रहे हैं ना कि पुत्र की कामना की है, तो चलो ये देख लेते हैं कि पुत्री की नहीं की है क्या। तो हमें तो एक भी मंत्र नहीं मिला जिसमें उन्होंने कहा हो कि हमें पुत्री मत देना
जी।
तो ये एक एक आदर्श स्थिति है ना,
वो बच्चा
आज के समाज में या आज से थोड़ा पहले के समाज में ऐसा नहीं था, भेदभाव करते थे, ये चाहिए ये नहीं चाहिए। तो ये एक मेरे को वेद में नारी के विषय में अच्छा लगा। और जो शादी की बात करो, उसकी पढ़ाई लिखाई की बात करो, सब पढ़ने जाते हैं, मतलब ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई पढ़ाई नहीं कर रही है, वो भी मंत्र लिख रही है। जैसे आजकल कहा लड़कियां किताबें लिखती हैं, वैसे वो भी मंत्रों की रचना कर रही है। 36 या कितनी ऋषि स्त्रियां हैं
जी जी,
घोषा लोपा मुद्रा पाला जाया, मतलब 36 ना, पूरा एक लेख मेरा इस पर भी है। और वो उनको उनके बारे में पढ़ते हैं ना, तो ऐसा कोई तो बहुत बूढ़ी हो गई है, उसकी शादी नहीं हुई है, उसने की नहीं
जी।
और वो क्यों नहीं की, तो वहां पर लिखा है कि वो घर में ही रहती है, अमाजूर वो घर में ही रहती है, पितृसद पिता के साथ रहती है। तो प्रश्न उठता है क्यों रहती है, फिर पता लगा इसलिए रहती है कि उसका भाई नहीं है।
अच्छा,
तो भाई नहीं है तो कौन देखेगा माता पिता, तो उसने शादी नहीं की, यही अर्थ निकला ना शादी।
ये तो बहुत बड़ी बात है आज।
तो ये मतलब तीन, ये शब्द तीन बार यूज हुए हैं, अब भ्रातृका एक बार, अमाजरू एक बार, पितृसत, फिर एक जगह और वर्णन है कि एक ने चलो कर ली थी शादी, वो लौट के बार बार लौट के पिता के पास आती, बार बार लौट के। अब लोग इसके मीनिंग निकालने में कुछ और भी निकाल देते हैं, लेकिन मैं इसका मीनिंग निकालती हूँ कि वो पिता की देखभाल के लिए बार बार लौट के आती है, मतलब ससुराल से लौट लौट के आती है
जी जी।
तो इसके मतलब वो स्वतंत्र है। एक मंत्र कहता है युवानम पतिं विंदेत, युवा होने पर पति को वरती है, अपनी इच्छा से भी शादी कर सकती है। एक मंत्र कहता है वो विदथ में जाती, विदथ का मतलब होता है ये जो कॉन्फ्रेंसेज होती है
जी जी,
सभा समितियां होती हैं उसमें जाती है। तो मतलब इन सब को देखकर ऐसा समझ में आता है कि मतलब उसको कोई बंधन में नहीं रखा हुआ है, वो जो चाहे जैसे चाहे जब चाहे शादी करे, करे ना करे, उसकी उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। करेगी तो युवावस्था में करेगी, पढ़ाई लिखाई भी करेगी और डिबेट में भाग भी लेगी। और आपने कहानी सुनी होगी, अगर बहुत बड़ी कहानी और इम्पोर्टेंट कहानी है जनक और जनक की सभा वाली, जिसमें याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ गार्गी का डायलॉग होता है, संवाद होता है
जी।
और गार्गी कॉलेज दिल्ली में इसीलिए बना हुआ है, तो गार्गी का संवाद होता है और वो बहुत ज्यादा लंबा चलता है उनका डायलॉग। उनका हुआ क्या कि बहुत सारे ऋषि थे, पूरी सभा बैठी हुई है। जनक ने बोला कि जो सबसे ब्रह्म को जानने वाला सबसे बड़ा ऋषि अपने को समझता है, तो वो ये गायें, उसको मैं 1000 गायें दूंगा, वो घर ले जाए। तो अभी याज्ञवल्क ने डिबेट शुरू भी नहीं की और अपने स्टूडेंट को कहा कि जाओ गायों को घर ले जाओ। तो सब लोग बहुत विचलित हो गए, ये क्या बात हुई, अभी तो आपने संवाद ही नहीं किया। कहते कोई बात नहीं, अब कर लेना, अब कर लो संवाद। तो सबने बोल, सब लोगों ने प्रश्न रखते गए, वो उत्तर देते गए, रखते गए। 2-4-5 दिन, कितने दिन तक ये चलता रहा। फाइनली गार्गी खड़ी हुई, गार्गी ने बोला अब मैं प्रश्न करूंगी और अगर मैं इनको निरुत्तर कर सकी तो समझ लो कि ये नहीं है ऋषि विद्वान, और अन्यथा तो ये विद्वान होंगे। फिर वो बहुत लंबी डिबेट चलती है गार्गी और याज्ञवल्क्य की। बृहदारण्यक उपनिषद में है ये सारी बात। और फिर गार्गी डिक्लेयर करती है कि हाँ ये ऋषि ब्रह्म को जानने वाले हैं और सबसे बड़े ऋषि यही है, इन्होंने ठीक किया जो गायों को शाम को ही ले गए, अभी तो बहुत दिन गुजर चुके हैं तो इन्होंने पहले से ही समझ गए थे ये। तो इस तरह से हमें मैत्री का दूसरा नाम है जो उनकी पत्नी है जो डिबेट करती है, तो मतलब स्वतंत्र है, बोल सकती है। वैदिक काल तो मैंने बोला ना आदर्श स्थिति का बखान करता है।
मैम फिर इतनी अच्छी दशा थी जैसा आप बता रहे हैं उस समय वेदकालीन भारत में, तो कहाँ हम भटक गए कि जो आज इस तरह की दशा। फिर हालांकि शिक्षा व्यवस्था तो आज भी अच्छी है और लड़कियों को काफी कुछ करने के अवसर भी मिलते हैं, और जैसा आपने बताया कि लड़कियां अपने माता पिता का भी बहुत ध्यान रखती हैं, वो चीज भी अभी बहुत है समाज में, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें गलत भी जो होती हैं, तो कहां हम भटके हैं जो इस तरह की चीजें हो रही हैं।
सोचने की तो बात जरूर है ये, क्योंकि फिर उसके बाद रामायण महाभारत में भी थोड़ा सा फर्क दिखाई दे रहा है ना
जी।
लेकिन फिर भी स्त्री की ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अपने मन का नहीं कर सकती है। मुझे हमेशा ये लगता है जब अगर कोई स्वतंत्र है, मन से स्वतंत्र है, कोई बंधन में नहीं है, चाहे ससुराल में हो चाहे मायके में हो चाहे कहीं, तो वो इस अच्छी स्थिति का एक सबूत है। और अगर वो चाह रही और नहीं कर पा रही है, इस तरह की कुछ स्थिति है, तो वो बंधन है, परतंत्रता है। तो महाभारत में भी थोड़े थोड़े दिख रहा है कि कहीं कहीं तो परतंत्र लग रही है, कहीं कहीं स्वतंत्र लग रही है। अब कहीं 5 पति कह दिए तो 5 फिल्टर नहीं है, वो चीरहरण हो रहा है तो हो रहा है, और कहीं लग रही है बड़ी डांट देती है युधिष्ठिर को, अपने पति को भी डांट देती है, दुर्योधन को भी डांट देती है। तो मतलब मिला जुला कह सकते हैं ना, वही सीता भी हमारे रामायण में भी, उनकी इच्छा है वो जाएंगी राम के साथ तो जाएंगी, कोई उन्हें रोक नहीं सका, और कभी वो उनको कुछ भी कोई हरण भी करे जा रहा है, तो मतलब मिक्स हो गया ना।
बहुत अच्छी तो नहीं थी उस समय, मतलब ऐसा लगता तो नहीं,
थोड़ा थोड़ा गिरावट दिख रही लग रही है दोनों महाकाव्यों में
जी,
दोनों ऐतिहासिक काव्यों में। फिर इसके बाद हमारा संस्कृत साहित्य का इतिहास शुरू होता है, वहाँ पर भी कहानियाँ, ढेरों सारे नाटक, तो ये सब जो रामायण महाभारत में है वही वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। और फिर आपको इतिहास की तरफ ध्यान रखो कि क्या हो रहा है देश में, बाहर से लोग आना शुरू हो गए, आक्रमक तुर्क और हूण और ये सब के दूसरे लोग, तो ये सब जो 1300 साल इस तरह से देश में रहा
जी,
दूसरे लोगों के आते रहे और यहाँ पर तो पढ़ाई बंद हो गई लड़कियों की
जी,
ठीक है
जी।
पढ़ाई बंद हो गई तो घर में बैठ गई, तो जल्दी शादी करने का शुरू हो गया, तो जल्दी शादी होगी, तो अब आपको पता है कि डेथ भी, बच्चा भी जल्दी होगा तो बच्चे होने में डेथ भी हो सकती है, फिर दूसरी शादी होगी, फिर विडो हो जाएंगी, तो मतलब एक एक से जुड़ के सारी गड़बड़े शुरू हो गई
जी, जी।
जो आपने बोला ना शिक्षा, गड़बड़ वहीं से शुरू हुई, शिक्षा रुक गई,
जी
शिक्षा क्यों रुक गई, क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे तो कोई पकड़ लेगा, तो कोई कुछ कर लेगा, तो इसलिए घरों में रहो, घरों में रहो तो शादी जल्दी कर दी। तो ये जो विडो की विडो होना, फिर विडो के साथ और अत्याचार करना, तो ये मध्यकाल का जो हमारे भारत का मध्यकाल का इतिहास है उसमें उसकी बड़ी अवनति के लक्षण दिखाई देते हैं। और उसका कारण वो खुद नहीं है, उसका कारण परिस्थितियां कह सकते हो, सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां। आर्थिक इसलिए क्योंकि अब परतंत्र है तो दूसरों खाने पर निर्भर कर रही है, तो इसलिए शिक्षा जैसे ही रुकती है सारी दुर्गुण शुरू हो जाते हैं। तो मध्यकाल के इतिहास में हमें जो सारी चीजें दिखाई देती हैं, बहुत सारी इसी तरह से चीजें दिखाई देती हैं। सती भी आपने सुना होगा,
जी जी,
थोड़ा बहुत अब वो भी होने लगा, विधवा के साथ दुर्व्यवहार, तो मतलब जल्दी जल्दी मैरिज होगी तो विधवा होने की संभावना भी होगी, फिर बड़ी एज के आदमी से शादी करना, मतलब कितनी शरद चंद्र की कहानियां पढ़ो, प्रेम की कहानियां पढ़ो, तो ये सब थोड़ा हमें इतिहास से और अपने साहित्य से पता लगता है। तो वो तो हुआ ही है जो आप कह रहे हो, हुआ ही है। फिर अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया 200 साल के करीब वो रहे, तो वो भी क्या उनके समय में भी ये स्थितियों में ठीक सुधार थोड़े ना हो रहा है, अभी भी वही सब चल रहा है। अभी अब वो अत्याचार कर रहे हैं तो फिर स्त्री को छुप छुप के रहना पड़ रहा है, तो शिक्षा बंद हो गई, छुप छुप के रहना है, अपने मन की बात बोलनी नहीं है, तो स्थिति तो बिगड़ी हुई मानी ही जाएगी ना।
जी गुलामी का जीवन बहुत सालों तक रहा ना, उस वजह से तो बहुत ही दशा
लगभग, हाँ बहुत साल, 1300 के लगभग
शायद मुस्लिम तो, और फिर अंग्रेज दोनों
हाँ, तो इसलिए ये जितनी अवनति होनी थी हो गई। लेकिन अभी भाग्यवश हमारी अंग्रेजों के जाने से पहले ही बहुत महापुरुष पैदा हुए हैं, एक से बढ़कर एक पैदा हुए हैं, जिनकी हम लोगों ने अपने बचपन की किताबों में लेख पढ़े हैं, राजा राम मोहन राय है ना, ईश्वरचंद विद्यासागर, इन सब के नाम, जिन्होंने गांधी जी तो हैं ही, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने इन पर भी कुछ कुछ तो वो अपने अपने कार्य कर ही रहे थे, उनके अलावा औरतों की ये जो दशा है इन पर ध्यान उन्होंने दिया। जैसे राजा राम मोहन राय के साथ सती को जोड़ा जाता है कि सती प्रथा उन्होंने बंद कराई है ना, उनको उसको देख के बहुत बुरा लगा, तो इस तरह से किसी किसी के साथ, गांधी जी के साथ कहा जाता है उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा को प्रारंभ करा करने की ओर जोर दिया, और आजादी की लड़ाई में स्त्रियां भी भाग लें, लड़कियां भी भाग लें, सबको भाग लेना है, ये नहीं कि खाली पुरुषों को लेना है, तो दोनों को एक साथ मिलके काम करना है। तो ये इस तरह के बड़े सारे हमारे महापुरुष मुझे लग रहा है एक साथ अनेक हो गए थे और अनेक समस्याएं भी थी, तो उन्होंने उन पर ध्यान दिया। अंग्रेजों को निकालना तो चल ही रहा था, कॉमन सबका था, और फिर अंग्रेज बाहर भागने की तैयारी भी करने लग गए थे, तो करते कराते जैसे भी भारत देश स्वतंत्र हुआ, सब लोगों ने पढ़ा होगा क्या और कैसे रहा, तो अब ढेर सारी समस्या के साथ हमारा स्वतंत्र भारत का शुरू होता है शासन, तो उसमें धीरे 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 सुधार करते हुए अब जो स्थिति आपको दिखाई देती है वो वहां तक पहुंचे।
यानी आप कहोगे कि काफी सुधार आया है, काफी बदलाव आ गया है उस समय की स्थिति से और आज की।
हाँ, अगर इस तरह से हम देखेंगे तो सचमुच में आएगा, पता लगेगा कि
उस समय पर बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, इन सब चीजों से तो बहुत ही ज्यादा समाज की स्थितियाँ खराब थी, बहुत
ये सब तो लगभग अब बंद ही हो चुकी
है, बंद हो चुका है जी।
और पढ़ाई भी किसी को रोकने का अधिकार नहीं है, पढ़ाई अगर करना है तो वो कर सकती है ना, कोई जबरदस्ती घर में बैठाएगा ऐसा नहीं है, कोई भी पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, जो चाहे वो बन सकता है, नौकरी कर सकता है, अर्थव्यवस्था में भी अपना सहयोग दे सकता है। तो अभी स्थिति से ये भी तो कर रही है ना लड़कियां, नौकरी भी तो कर रही हैं,
बिल्कुल कर रही हैं मैम, पढ़ भी रही हैं, नौकरी भी।
मैंने तो आपको शुरू में बोला था स्वर्णिम स्थिति शायद हम इसको कह सकते हैं, कि आप देखो आर्थिक दृष्टि से भी स्वतंत्र हैं, नौकरी भी कर सकती हैं, स्वतंत्र विचार है, उनके अंकुश लगाने का समय नहीं है कि कोई अंकुश लगा के उनको डांट डपट के बैठा देगा, अगर होता है तो उसको हम कानूनी रूप से गलत कहते हैं, तो इसलिए जब चित्त बिल्कुल प्रसन्न हो तभी होता है जब उसकी वो स्वतंत्रता का अनुभव करता है। तो एक कहीं मैंने पढ़ा भी था कि किसी भी समाज की नारी की स्थिति कैसे पता लगाओगे कि क्या है, तो उन्होंने कहा था सिर्फ एक ही मापदंड से नाप सकते हो कि वो कितनी स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने में
जी।
कि उसको खाने का ये खाने का मन है, उसको शरबत पीने का मन है तो शरबत नहीं पी सक रही है क्योंकि सासू जी ने मना किया है, क्योंकि ससुर ने मना, तो इस तरह से जहाँ पर वो जितनी निर्भीक और स्वतंत्र होगी उतनी उसकी उसकी स्थिति अच्छी है ऐसा कह सकते हैं उस घर में उस समाज में।
तो यानी विचारों की स्वतंत्रता हो और निर्णय की स्वतंत्रता,
बहुत घरों में ऐसा नहीं होगा
जी।
हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर से पता लगता रहता है, मगर ये होना चाहिए
जी,
ये
बिल्कुल
होना चाहिए। और शिक्षा अगर होगी तो ये होगा, तो शिक्षा होगी तो उसके पास पैसे होंगे, पैसे होंगे तो उसको किसी से झुकना नहीं है, और निर्भीकता रहेगी तो उसका चित्त प्रसन्न रहेगा, खुद भी वो घर के काम दौड़ दौड़ के करेगी। तो इस तरह से संतुलन भी रखना है, लालन पालन बच्चों का भी करना है और समाज का भी कार्य करना है, तो सब तरफ योगदान देना है। ये आज की नारी तो बहुत सशक्त है और समर्थ है और सब तरह के कार्य कर भी रही है, कोई ऐसा कार्य नहीं है शायद जिसमें वो दिखाई ना दे।
बिल्कुल कोई क्षेत्र अछूता नहीं रह गया मैम, अब हर जगह लड़कियां कर,
कोई क्षेत्र कोई भी क्षेत्र, बड़े से बड़ा डॉक्टर लेडी डॉक्टर होती हैं, मिलिट्री में देख लो, हवाई जहाज चलाने में,
बिल्कुल
रेलगाड़ी चलाने में, स्कूटर टैक्सी अभी चलाने में, गाड़ियां तो वो चला ही रही थी, महाविद्यालयों में यूनिवर्सिटीज में बड़ी बड़े प्रोफेसर थे प्रिंसिपल, तो सब पदों पर मिनिस्टर प्रधानमंत्री सभी कुछ स्त्री द्वारा स्त्री कर सकती हैं, लेकिन सब ऐसा कर पा रहे हैं नहीं कह सकते, और वही रुकावट है। एक तो मेरा ये मानना है अगर हम अपनी बातों को इसी को निष्कर्ष पर निकलना चाहें आज की स्थिति में, तो मेरे ख्याल से दो बातें समझ में आएंगी, एक तो ये सब जगह नहीं है
जी।
कहीं कहीं नहीं है और पुरुष अभी भी उन पर अंकुश लगाते हैं, और इसीलिए मैंने सुना है कि पुलिस में भी एक सेल बनाया गया है कि अगर कोई अत्याचार करता है या कुछ है तो वहां पर भी पहले से भी शिकायत करी जा सकती है, ये नहीं कि कुछ हो जाए उसके बाद ही पुलिस आएगी, नहीं पहले से भी शिकायत हो सकती है कि ये हम पर अत्याचार करते हैं ये इत्यादि करते हैं। तो एक तो ये इस तरह की जो बातें वो नहीं होनी चाहिए समाज में
जी जी।
इसका इस पर रोक होनी चाहिए। और दूसरा जो मैं स्वयं अनुभव करती हूँ, क्योंकि मैंने लड़कियों को बहुत वर्षों आप सोचो 72 से लेकर अभी तक यंग लड़कियां मेरे संपर्क में रही, क्लास बदलते रहे, यंग लोग आते रहे हर क्लास में बदल बदल कर
जी।
तो मैंने 50 साल की जनरेशन पूरी देखी हुई है, तो कैसे वो मतलब जीवन मूल्यों को जो भारतीय मूल्य हैं जीवन मूल्य हैं उनकी महत्ता को धीरे धीरे वो छोड़ रहे हैं
जी।
ये गलत हो रहा है, जो जहाँ पर शिक्षा लेने का ये अर्थ हो रहा है वो गलत हो रहा है कि शिक्षा प्राप्त कर ली अब हमने ये हम तो ये बन गए तो हम ये वाली बातें नहीं कर सकते।
ये बहुत बड़ी बात मैम आपने कही।
भारतीय संस्कृति के जो उसूल हैं जो हमें भारतीय बनाते हैं जिससे हम भारतीय बनते हैं है ना, भारतीय के हमारे आदर्श है जो शुरू में मैंने बताया, तो वो आदर्श जो है जो वेदों ने बताए थे मातृ देवो भव पितृ देवो भव सत्यम व धर्मम चर, तो वो जो हमारे वाक्य आदर्श वाक्य हैं जो भारतीय बनाते हैं, और भारतीय बनते हैं तो हम फिर एक भारत बनते हैं। तो वो अगर पढ़ाई लिखाई से ये समझती हैं लड़कियां कि पढ़ाई का मतलब है इनको छोड़कर हम पाश्चात्य का अंधानुकरण करेंगे
जी,
तो वो गलत है। ये दो चीजों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि पढ़ाई का मतलब पाश्चात्य अनुकरण नहीं है, वो आधुनिकता हमारी भी हम भी आधुनिक हो सकते हैं, भारतीय भी आधुनिक हो सकते हैं, तो आधुनिकता का मतलब वेस्ट की नकल करना उनके कल्चर की नकल करना नहीं है
जी।
और अगर कहीं पे गड़बड़ हो रही है समाज में घरों में झगड़े झमेले ये वो, तो फिर अगर ये वजह है तो फिर दोषी और स्त्री को ही माना जाएगा, अगर वो माता पिता की आदर नहीं करी, सास ससुर का आदर, तो इस तरह की बातें भी नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर बंदिशें भी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों को मिलाकर अगर संतुलित रहा जाएगा तो समाज में सबसे अच्छा स्थान होगा नारी का, ऐसा मैं मानती हूँ।
ये बहुत बड़ी
दोष है और दोनों दोषों को दूर करने में, मतलब खाली स्त्री स्वयं कर लेगी नहीं, पुरुषों को भी सहयोग देना पड़ेगा
जी।
और जिससे कि वो ऐसा ना हो पाए, उनको घर के काम देखने, थोड़े बहुत घर के कामों में सहयोग देना पड़ेगा, उसके कार्यों में सहयोग देना पड़ेगा। जैसे अब हम और आप बैठ के कर रहे हैं तो घर में शोर नहीं मचा और रिकॉर्डिंग हो रही है
जी।
तो इस तरह से दूसरे लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपस में परस्पर आदान प्रदान से ही समाज चलता है ना, तो स्त्रियों का समाज है ना पुरुषों का समाज है, दोनों का मिलजुल के बनता है ना समाज।
बहुत अच्छी बात मैम, छोटी छोटी बातें लेकिन यही बातें बहुत मायने रखती हैं जीवन में। और मैम इसी से जुड़ी हुई एक और बात है कि लोग स्वतंत्रता का, खासकर लड़कियां, आजकल गलत अर्थ भी लगाती हैं कि मतलब हमने कैसे कपड़े पहने हैं या हम किस तरीके से रह रहे हैं उसको स्वतंत्रता समझती हैं, जबकि वैचारिक स्वतंत्रता या निर्णय लेने की स्वतंत्रता ये मुख्य रूप से मायने रखती है जीवन में, उसको असली स्वतंत्रता कहेंगे। वो तो मिल नहीं पाती है, और हम कैसे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं उस चीज को हम ज्यादा जोड़ते हैं, ये भी एक चीज समाज में बहुत होने लग गई आजकल।
बिल्कुल, यही तो गलत हो रहा है
जी।
मतलब जो जैसे जिसको कहते हैं ना ट्रेडिशन,
परंपरा,
तो परंपरा का आधुनिकता से विरोध नहीं है।
बिल्कुल,
हम और तुम भी बहुत आधुनिक है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना।
बिल्कुल,
टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है हमारा, संस्कृत और वेद हमने पढ़ा हुआ है, एक तरफ तो इतना प्राचीन ग्रंथ पढ़ा हुआ है, एक तरफ टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों का समन्वय हो सकता है, दोनों में विरोध नहीं है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि बाहर की नकल करके तुम करो, अपनी चीजों में दोनों का समाहार कर सकते हैं।
बहुत अच्छी बात मैम, उनका हमको नकल करनी है तो हम टेक्नोलॉजी में करें या ज्ञान में करें, उन चीजों में करें, ठीक है जो चीज अच्छी लगती है उसमें करें, लेकिन खाली मतलब आउटफिट से हम समझ लें कि वही आधुनिकता का पैमाना है तो उससे कोई मतलब नहीं हल होता। बिल्कुल ठीक मैम,
आधुनिकता तो लानी ही है, आधुनिकता की मनाई नहीं है, क्योंकि युग के साथ चलना पड़ता है।
बिल्कुल,
मगर परंपरा जो है वो पीछे से आ रही है, जो हमारे पूर्वजों ने डाले हैं जो नियम इत्यादि जो हमें जोड़ते हैं, जो हम जैसे हम लोगों ने धर्म की बात भी की, तो सब चीजों का उनको लेके साथ में आधुनिक होना है, नहीं तो इस ऐसी आधुनिकता को अधूरी आधुनिकता कहा जाएगा, नकल करने वाली आधुनिकता कहा जाएगा, सच्ची आधुनिकता नहीं कहा जाएगा। तो नारी दिवस पर ये सब चीजों को हम लोग मनन करें, चिंतन करें कि कैसे वो अपने गौरवपूर्ण, गरिमापूर्ण, सब लोग उसका आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, उसके लिए उसमें भी अपने गुणों का अर्जन करना पड़ेगा ना।
बिल्कुल,
उसको अपने गुणों को बढ़ाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, प्रदर्शन उनका करना पड़ेगा, उनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये सब ऐसे कुछ बातों का संकल्प करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अपनी उन्नति तो करो करो, समाज की, परिवार की, देश की, विश्व की भी उन्नति करो
जी। मैम एक और बात मैम, आजकल बहुत समाज में चलती है, खासकर सोशल मीडिया में तो ये चीज बहुत चल रही है कि पुरुषों का महिलाओं को सहयोग नहीं मिलता। तो जैसा अभी आपने भी कहा कि मतलब बिना आपसी सामंजस्य के, एक दूसरे को समझे बिना हम कुछ नहीं कर सकते, छोटी सी चीज हम रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं तो हमको घर वालों का सहयोग होना चाहिए, तो इस विषय में आप क्या कहेंगी कि सच में नहीं मिलता है पुरुषों का सहयोग कि महिलाओं का नहीं मिलता, या आप इस विषय में मतलब आपका अपना क्या कहना है?
नहीं, मिलना चाहिए, पहली बार जरूरी तो यही है
जी, जी।
मिलना चाहिए, और जहाँ मिलेगा वहीं पर वो कर पाएगी, ये दूसरा सच है, क्योंकि नहीं तो नहीं कर पाएगी। अगर वो रोड़े अटकाएंगे पुरुष तो नहीं कर पाएगी, ये सच है। जैसे कहावत है ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे हर सक्सेसफुल औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है।
जी बिल्कुल,
तो अगर सहयोग नहीं देंगे तो नहीं, तब नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सहयोग तो देना ही चाहिए, और जो नहीं देते हैं तो फिर वो उसको मुश्किल होती है, और बहुत बार संबंध विच्छेद तक की नौबत भी आ जाती है। तो ये सब स्थितियां ना पैदा हो, इसलिए थोड़ा बहुत जितना हो सके। बाकी ये है कि जो गुण नारी के हैं वो नारी के ही रहेंगे, जो पुरुष के हैं वो पुरुष के ही रहेंगे। अब ये भी एक होड़ लगी हुई है कि नारी को, नारी सोचती कि उसको पुरुषों के की तरह के गुण, उस बहस करना, ये करना, जो जोर से चिल्लाना या चीखना, मतलब ये जैसे वो कर सकता है मैं भी कर सकती हूँ, तो इसकी होड़ नहीं हो रही है। यहाँ पर होड़ नहीं हो रही है, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है पुरुष और स्त्री। तो ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, सहयोगी, दोनों मिलकर ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक दूसरे का सहयोग तो देना ही पड़ेगा, इसके बिना ना वो आगे बढ़ेगा ना वो आगे बढ़ेगा।
अभी आपने दंपति का पहले जो हमें बताया, दंपति शब्द का अर्थ वही वाली बात आ जाती है मैम, पूरक वाली।
हाँ और क्या, पूरक है एक दूसरे।
जी जी।
और हमेशा ही आपने हमारे तो धर्म में भी उनको अर्ध नारीश्वर कहा गया है, शिव जी को आधा स्त्री आधा पुरुष
कहा। मैम बहुत कुछ गया है, बस ये कि आजकल हो कितना रहा है
वो ना रह जाए। मुझे यही रहता है कि किताबों में रहने से कुछ वो फायदा नहीं है। अगर किताबों में ही रखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, उसकी अनुकरण नहीं कर रहे तो भी क्या लाभ। तो भारतीय आदर्श जितने भारतीय साहित्य में है दुनिया में कहीं नहीं होंगे, तो उनको पढ़ के थोड़ा बहुत कुछ तो उनका अनुकरण करते रहना चाहिए।
जी। और आप जैसे लोग मैम हम लोगों को सरल तरीके से उन चीजों को बताते हैं तो ज्यादा समझ आती है चीज बातें। आप लोगों का आगे आना बहुत जरूरी
है। जी बताते हैं, नाना नानी दादा दादी ये सब भी बताते हैं लोग बच्चों को, जहाँ बच्चे इन लोगों के साथ रहते हैं वहाँ हमने देखा है बच्चे ज्यादा अच्छे होते हैं।
जी,
जो बड़े समय थोड़ा समय इन अपने नाना नानी दादा दादी के साथ बिता देते हैं।
लेकिन आजकल ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है तो अकेले ही रह रहे हैं बच्चे भी माता पिता के साथ ही, तो ये चीजें बहुत कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है। जी मैम।
तो यही मुझे तो समझ में आता है कि वो परंपरा भी चाहिए और आधुनिकता भी चाहिए, आगे भी बढ़ना है और पीछे को छोड़ना नहीं है।
जी।
एक श्लोक है संस्कृत में।
जी।
चलत एकेन पादेन तिष्ठत एकेन बुद्धिमान। जो बुद्धिमान होता है
जी।
वो एक पैर से चलता है और एक पैर से खड़ा रहता है।
अच्छा।
जब हम चल रहे होते हैं ना, आपको दोनों पैरों की आवश्यकता है ना।
जी बिल्कुल।
एक आगे बढ़ाया हुआ है, एक पीछे जमा हुआ है। जब आप पीछे वाला पैर आगे बढ़ाएंगे तो आगे वाला पैर जम जाएगा, और फिर जब वो आगे चलेगा तो वो एक 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 आगे एक पीछे रहेगा।
जी।
तो ऐसे ही हमारे हमको करना है कि पीछे को भी, मूल को भी नहीं छोड़ना है और आगे भी बढ़ना।
वाह, बहुत बहुत ज्ञान की बात है ये तो मैम, बहुत बड़ी बात है। और आप लोग तो वेद के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, मैम आपकी जो संस्था है वेद, इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? आप लोग क्या वेदों के विषय में इसमें बात कर रहे हैं काम? आप तो कई वर्षों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और काफी सारे आपने इसमें कार्यक्रम भी किए हैं।
वहाँ भी यही है कि जानने की इच्छा जिनकी है वो लोग इस ग्रुप में है, और हम विद्वानों को आमंत्रित करते हैं, कभी संगोष्ठी होती है, कभी सभाएं होती हैं, कभी लेक्चर भी होते हैं, और उनके ज्ञान से मतलब उनका सुनते हैं, कभी प्रश्न करना है तो प्रश्न भी होते हैं। तो सिर्फ देखो विद्वान जो है वो सिर्फ बता सकता है।
जी,
है ना।
जी जी।
तो जिसने जितना पढ़ा है, हम अगर उस किताब को पढ़ेंगे तो शायद हमें 5 दिन 10 दिन लगे, तो उनको हम 1 घंटे सुनेंगे तो हमें शायद बहुत कुछ नया सा पता लग जाएगा।
ये बात बहुत।
तो इसलिए फिर समय समय पर हम ऐसे विद्वानों को बुलाते और सुनते हैं, और बाकी चलना उनको उस पर व्यवहार में लाना, जीवन में उतारना, वो तो स्वयं का कार्य है ना, वो तो खुद ही करना पड़ता है।
जी।
लेकिन करने से पहले जानना भी जरूरी है, तो जानने की भूमिका जो है वो वेव निभा रहा है, जानना और जनाना, लोगों को बताना।
जी नहीं, बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। इससे मैं वही वाली बात की पुस्तक तो सभी के पास मिल सकती है और उसको हम पढ़ भी सकते हैं, लेकिन पढ़ने से वो बात नहीं आती जितनी सुनकर और जल्दी हम उस चीज को आत्मसात करते हैं। और मैम मतलब वेदों की हम लोग बात कर रहे हैं तो वेदकालीन नारी अधिकारों की तुलना में आप आधुनिक नारी के अधिकारों को किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि उस तरह के अधिकार हैं आज हमारे पास आधुनिक काल में?
नहीं, अधिकार वैसे व्यवहारिक तौर पर तो शायद नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर तो है। संविधान में तो सारे अधिकार बराबर दिए गए, मगर हो कहाँ रहा है समाज में? यही तो बात हम कर रहे हैं कि सब जगह नहीं हो रहा है, सब जगह हो ये वाली स्थिति अभी नहीं पहुंची है, क्योंकि तो, नहीं तो फिर अखबारों में इतनी घटनाएं सुनाई कैसे देती हैं?
तो मैम हम लोग
ये वो उसमें कमी क्यों हो रही है वो हमें ढूंढना चाहिए। और कमी एक तो यही है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, तो शिक्षा सभी को, कम से कम शिक्षा सब लड़कियों को मिलनी चाहिए। एक लड़की शिक्षा प्राप्त करती है तो पूरा एक परिवार शिक्षित हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। अपने बच्चों को पढ़ाएगी सिखाएगी अच्छी बातें, कम से कम इतना तो होता है। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए अभी पूरा नहीं मिला है, अभी तो आधे आधे रास्ते पार हुए हैं, कई अड़चने हैं, और शायद विश्व में सभी जगह पर। एक अभी थोड़े दिन पहले ही ये शायद इसी दिवस के उपलक्ष्य में किसी ने सर्वे किया तो ये पाया कि दोनों के अधिकार समान है, ऐसा अधिकार आयोग तो कह रहा है, लेकिन कहाँ पर समान है, किन किन देशों में समान है? तो मुश्किल से 8 या 9 देश निकले जहाँ पर समान है
जी,
बाकी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर नहीं समान है, वो 123 देश हैं
जी जी,
और उनमें हमारे देश का नंबर 122वां है। सोचो कितने नीचे है,
कितने नीचे।
तो बिल्कुल फ्रांस इत्यादि जो देश है, कुछ खास देश बस वहीं पर दोनों समान है। तो इसलिए ये अभी बहुत रास्ता है लंबा, बहुत प्रयास करने की जरूरत है, और जिन जो लड़कियां जो औरतें कर सकी हैं, आगे बढ़ सकी हैं, उनको समाज को देख के और दूसरों को मौके देने चाहिए। जैसे आप कह रहे हो कि प्रेरणा प्राप्त होती है, तो प्रेरणा प्राप्त हो कि भी ऐसे हम भी अपनी बेटी अपनी बहू को पढ़ने दें, काम करने दें, सोचने समझने दें। तो सब जगह नहीं हो रहा है ना, ये दुख की बात है, इसीलिए रुकावट आ रही है, और हमारा जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी समाज का नुकसान हो रहा है, इसलिए हो रहा है। तो औरत की इस स्थिति को इम्प्रूव करने की तो जरूरत अभी भी है ही, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ले लो
जी जी,
है ना, स्वास्थ्य की दृष्टि से, उसका शिक्षा की दृष्टि से, उसकी सोच समझ की दृष्टि से, घूंघट में रखना कहीं कहीं होता है, कहीं कुछ और परंपराएं हैं, खाना लास्ट में खाना, नहीं बचा तो नहीं खाना। तो ये सब चीजें अगर सुनाई भी नहीं देनी चाहिए आजकल सभ्य समाज में, मगर सुनाई भी देती हैं और दिखाई भी देती हैं।
तो मैम अब शिक्षा का तो काफी सुधार हुआ है, मेरे ख्याल से काफी लड़कियां पढ़ रही हैं, और कई ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं जो होती हैं वो पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ भी हो रही हैं। तो फिर ऐसे में तो ये भी विषय सोचने का एक हो जाता है कि शिक्षित लड़कियों के साथ क्यों ऐसा हो रहा है।
नहीं तो खाली लड़कियों की शिक्षा से नहीं होगा ना, लड़कों की शिक्षा भी तो उसी तरह बराबर होनी चाहिए।
आप
लड़कियों की बात कर रहे हैं
जी,
तो लड़के भी तो अशिक्षित खूब घूम रहे हैं,
नहीं
लड़के भी तो अशिक्षित हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, उन्हें कुछ ठीक से सिखाया नहीं जा रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो खुराफात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उनके पास टाइम ही टाइम है, काम नहीं है, या कुछ बजे हैं, पढ़े नहीं है। तो दोनों के शिक्षा तो दोनों के लिए जरूरी है।
संस्कारों की बात भी मैम आ जाती है फिर।
हाँ, संस्कारों की बात भी आ जाती है। लड़के भी अगर नहीं समझदार हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, और उनको नहीं सीख पता है कि उनको कैसा काम करना है, क्या करना है, तो फिर क्या, फिर तो तब भी तो गलत हो रहा है ना
जी, बिल्कुल।
तो हमारे यही है कि बहुत, मुझे तो यही लगता है कि काफी आगे हैं लोग, हम लोग औरत की नजर से देखें तो काफी आगे हैं, और काफी पीछे भी हैं। तो कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं, जो पीछे उन्हें आगे लाने की जरूरत है
जी।
जो आगे चले गए वो ही हाथ पकड़ पकड़ के खींच के लाएंगे, तभी होगा
जी। ये तो बहुत बड़ी बात है जी।
अब जैसे हमारे संपर्क में जो लेडीज आती हैं हमारे घरों में काम ही करने के बहाने, कपड़े प्रेस करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो हम उनको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बताते रहते हैं, तो उनका डेवलपमेंट होता है ना।
बिल्कुल,
वो भी आती हैं, वो भी देखती हैं ये लोग ऐसे रहते हैं तो वो भी ऐसे रह सकते हैं। तो इसलिए दोनों का मेल जोल होना चाहिए, ना कि दो खांचे बन गए अलग अलग, दो ऐसा नहीं है। संपर्क में आपस में मिलेंगे तो देख लेंगे एक दूसरे के बारे में। यस, तो हो रहा है ना, बहुत जगह हो रहा है, शहरों में तो हो रहा है ना, ये जहाँ पे नहीं दो वर्ग है वहाँ पर शायद पिछड़ा हुआ होगा कुछ।
जी जी,
परंपरा के नाम पर भी कुछ गलत करते हैं लोग, डांट डपट के रखते हैं औरतों को।
जी, परंपराओं के नाम पर तो बहुत रूढ़ियां हैं अभी भी हमारे समाज में। जी जी,
तो ये कि बच्चे बच्चे होने को पे लेके, लेकिन जो आपने देखा होगा जो लोग समझदार हैं, काम कर रही हैं लड़कियां, नौकरी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं देश के काम, तो वो बच्चे तो वहाँ पे एक या दो बच्चे ही हो रहे हैं।
जी बिल्कुल,
तो वो परवरिश भी अच्छी से कर रहे हैं, बाहर भी जाती हैं तब भी बच्चों की परवरिश अच्छी से हो रही है, तो वो मैनेजमेंट इसमें इसके लिए उनको प्रबंधन करना पड़ता है और वो मेहनत करते हैं तो उनके घर उनके घरों में होता है, जो नहीं कर रहे कुछ मेहनत और कुछ भी तो बिगड़ रहा है उनके यहाँ पर।
बल्कि कम पढ़े लिखे माँ बाप भी आजकल अपने बच्चों को पूरी अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं, तभी मैम हो रहा है।
हाँ और क्या
जी,
वो भी हो रहा है क्योंकि वो कि देख के किसी का अनुकरण भी कर लेते
जी,
हैं।
जी जी, और मैं
शिक्षा तो मैंने शिक्षा तो मैं कहती हूँ कि बस एकमात्र जो जरूरी चीज है वो शिक्षा है। अगर शिक्षा होगी तो काफी बहुत सी चीजें अपने आप आ जाएंगी। स्वास्थ्य ले लो तुम,
जी,
पता
जी,
होगा ये विटामिन है, ये विटामिन डी है, ये
जी,
विटामिन
जी,
ए है ना, संतरे में ये, धूप में ये, तो स्वास्थ्य होगा, फिर उनकी रहन सहन है जिसको हाइजीन कहते हैं, स्वास्थ्य के नियम कहते हैं, स्वच्छता के नियम कहते हैं, सारी कुछ शिक्षा से तो अपने आप आ जाएंगे। चोट लगी तो कैसे फर्स्ट एड करना है, कैसे पट्टी बांधनी है, अगर पढ़ा लिखा कोई नहीं है तो पट्टी उसको पट्टी भी खून निकलने पर पट्टी कैसे बांधेंगे, ये भी नहीं कर पाएगा।
जी, सरकार तो स्तर पर भी मैम काफी
तो
हो रहा है,
जरूरी है।
जी, आयोडीन कैल्शियम की गोलियां बांटी जाती हैं ग्रामीण इलाकों में भी, अब सरकारी स्तर पर भी काफी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यही है कि आपके वाली बात से शिक्षा न होने से हमारे अंदर जागरूकता नहीं, तो हम उन चीजों का लाभ नहीं ले पाते हैं। जी मैम,
तो सर्व सर्व जो सिद्ध करने वाला हमारा हथियार है वो शिक्षा ही है।
जी, एक ही दवा है शिक्षा बस।
हाँ, महिला दिवस पर ये सब बातें याद करके करनी चाहिए और फिर से अपना वर्चस्व अपना गौरव लाना चाहिए, एक जो नारी के गुण है उनको उनको नारी, अब ऐसा भी नहीं होता भावना जी कि हम ये कहें तुम्हारा नाम ही भावना है, कि जो नारी के गुण है वो पुरुषों में नहीं होंगे, पुरुषों के गुण नारी में। अब ये दया है, प्रेम है, उदारता है, ममता है, तो ये पुरुषों में भी तो होते हैं।
बिल्कुल होते हैं,
और वीरता और साहस चपलता
महिलाओं में,
औरत में भी होते हैं, स्त्रियों में भी होते हैं।
जी जी,
तो गुण दोनों के गुण भी ऐसा नहीं है कि ये इनके गुण है वो उनके गुण है, दोनों गुण भी दोनों में होने चाहिए।
बहुत अच्छा।
अब वो थोड़े ज्यादा एक में थोड़ा परसेंट ज्यादा होगा, एक में थोड़ा कम होगा, लेकिन नारी आपने देखा ये पुलिस में भी जा रही है, सेना में भी जा रही है, पहाड़ की चोटी पे भी चढ़ रही है, तो वीरता में भी उनकी कमी नहीं है, साहस में भी कमी नहीं है, शक्ति में भी कमी नहीं है, लेकिन ये है कि अभी सारों को ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है। तो भगवान ने और प्रकृति कहना चाहिए उसने खुद ही एक बहुत संतुलित सा बनाया है स्त्री और पुरुष को, दोनों का मिलके जब कार्य करेंगे तभी वो एक अच्छा सा वातावरण होगा।
जी
नहीं,
बिल्कुल मैम,
देखो तो बड़ा सुंदर सा कल्पना चित्र बनता है।
बहुत अच्छी बात मैम, प्रकृति प्रदत्त जो हमें गुण है उनके साथ हमको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
हाँ, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जैसे खड़ा है वो, जैसे पेड़ एक खड़ा है उसके साथ लता खड़ी है, तो अब धीरे धीरे लता जमीन पे गिरेगी या फिर पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी, तो ऐसे नियम अपने आप ही बने हुए हैं, या तो गिर जाएगी अकेली, अगर औरत है उसको कोई सहारा नहीं मिल रहेगा तो कितना उन्नति कर लेगी, और या फिर वो किसी के सहारे से आगे बढ़ेगी, तो मतलब नियम प्रकृति के नियम भी तो हमारी प्रकृति पर भी तो लगते हैं।
जी,
हम भी, हमारी प्रकृति भी तो प्रकृति है।
बिल्कुल,
स्वभाव को भी तो प्रकृति कहते हैं।
जी जी,
नेचर, वो भी नेचर है, हमारा भी नेचर है।
जी,
और अंत में मैम आज के दिन से संबंधित प्रश्न करूंगी कि महिला दिवस जैसे आयोजनों का क्या लाभ समझते हैं, क्योंकि हम एक दिन बस ये कार्यक्रम कर लिए 3-4 और फिर खत्म पूरे साल के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक दिन का कोई मतलब नहीं हर दिन, और आप लोग तो काफी कुछ कर ही रहे हो जैसे इतनी शिक्षा के प्रति सब कर रहे हो, हम सबको क्या करना चाहिए, आप क्या संदेश देना चाहोगे इसके बारे में?
अब जो आजकल ये एक दिन बना दिया गया है ना, जब भी ऐसी एक दिन की बात होती है फिर मेरा ध्यान जाता है वैदिक साहित्य और साहित्य। तो हमारे यहाँ तो रोज कहते हैं सुबह उठो माता पिता के पैर छुओ, है ना, रोज रोज उनका आदर करना है। तो और फिर आपको पता ही है वो नवरात्र आते हैं,
देवी पूजा
में माता 9 दिन तक पूजा करनी है, तो दूसरा नवरात्र आता है 9 दिन की पूजा करनी है। अब वो एक दिन की तो यहाँ है ही नहीं कोई चीज। फिर ऐसी यहाँ फादर्स डे होता है, फादर्स डे मॉडर्न में ये बना लिया एक दिन का, वहाँ हमारे यहाँ तो पितृपक्ष होता है पूरा
जी,
15 दिन का पिता का पक्ष, फिर दूसरा पक्ष आता है 15 दिन का पिता का पक्ष
जी।
तो यहाँ तो प्रतिदिन और देवी को कह ही रहे मातृ देव, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य। तो देवी में माता का की कल्पना, हर स्त्री को यहाँ पर माता बोलने की बात है नहीं
जी? बिल्कुल है मैम।
अगर ध्यान से देखो तो वृक्षों को भी माता बोल रहे हैं, तुलसी माता,
गाय माता,
गंगा माता। तो ये है कि जो भी भरण पोषण कर रहा है उसको आदर देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो एक दिन की ये चीज नहीं है
जी,
ये तो प्रतिदिन की चीज, प्रतिदिन की है। लेकिन जहाँ कहाँ कुछ नहीं हो रहा तो एक ही दिन चलो कर लें ये है ना, कुछ नहीं थे तो कुछ भला। बाकी ये कि हमारे ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि एक दिन मनाया जाए, हमसे तो रोज कहा गया है करने को, अब हम रोज नहीं कर रहे हैं, चलो एक ही दिन कर लो
जी। भाव नहीं है ना मैम, जैसे गाय को माता कहते हैं या गंगा को, तो हमें ये सोचना चाहिए हम सिर्फ कहें ना बल्कि उसको मन से माने, सारी दिक्कत ये आ जाती है।
जो भी भरण पोषण कर रहा है, पानी नदी बह रही है वो हमारा भरण पोषण करती है, तो उनको सबको माता ही है वो सब। इस तरह से पृथ्वी माता, पृथ्वी को भी तो माता कहा गया है और वेदों में भी कहा गया है।
अच्छा,
सबसे पहले पृथ्वी को अथर्व वेद में माता कहा गया है
जी।
तो ये तभी तो मैंने कहा वेद से सब कुछ निकला है, सारे कॉन्सेप्ट वेद से निकले
जी जी।
अब वहाँ पे पुत्रो हम पृथ्वीयाः ऐसे कहा गया, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ
जी जी।
तो पृथ्वी का पुत्र हूँ तो पृथ्वी माता हो गई ना,
बिल्कुल।
और पुत्र कहा गया है, खाली ये नहीं कि एक ही, फिर लोग कहेंगे लोग पुत्र कहा गया है,
पुत्री ने कहा,
पुत्र मतलब पुत्री पुत्र सारी संतान सबका तात्पर्य लिया जाएगा।
पुत्र ही का शब्द प्रयुक्त होता था उस समय मेरे ख्याल से, कहीं पुत्री नहीं आता था, तो इसका मतलब पुत्रियां होती नहीं थी। वही आपके वाली बात जैसे कह देते हैं बच्चा है, तो बच्चा में बेटा बेटी दोनों हो गए
ऐसे ही है। पुत्र पुत्री जो पुत्री है उसमें भी तो पुत्र पड़ा हुआ है
जी, बिल्कुल,
पुत्र से पुत्री बन रहा है।
बहुत अच्छी बात है मैम, आपने इतनी प्रैक्टिकल व्यावहारिक बातें हमें बताई और इस तरह से समझ के बहुत सारी चीजें समझ आती हैं। चलिए सब नहीं भी याद रहेंगे या हम नहीं रखना चाहेंगे तो कुछ तो उसका याद रहता है मैम, इसलिए हम हमेशा चाहेंगे कि आपका भी मार्गदर्शन हम लोग को मिले और आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रम में आते रहें। और अपना आपने इतना समय दिया मैम, हम आपके बहुत आभारी हैं, हमको बहुत अच्छा लगा और मेरे ख्याल से हमारे श्रोता भी बहुत पसंद करेंगे आपके इन विचारों को। और आपने एक नया मार्ग हमें दिखाया कि सबसे बड़ी बात आपने जो ये कही कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है और शिक्षा भी कैसी हो ये मायने रखती है। तो मैम बहुत आपका आभार,
धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए
मैम,
धन्यवाद सबको, नमस्ते,
नमस्कार मैम, प्रणाम।